साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विचार चल रही है ज्ञान की सप्त भूमिका। तो हम दो भूमिका का विचार कर चुके हैं। पहली है स्वभिच्छा और दूसरी है सुविचारिणा। तो जब जीव इस संसार के दुखदाई जो विषय हैं उनसे दुखी होता है, संतप्त होता है, तभी उसके मन में स्वभिच्छा उत्पन्न होती है। स्वभिच्छा भाव अपने स्वरूप में स्थित होने की, मुक्त होने की, इस संसार बंधन से छूटने की इच्छा उसको होती है। स्वभिच्छा प्रभु से अनुराग होता है उसके चरणों में, भाव विवेक आता है उसके अंदर। जब विवेक आता है तभी उसको श्रवण मनन निधिध्यासन मिलता है। जब तक अविवेक है तब तक बंधन नहीं छूटता, तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग भी नहीं होता, प्रेम भी नहीं होता। अविवेक से आदमी विमोहित रहता है, उसको नहीं पता चलता, विषयों में गलतान रहता है, आसक्त रहता है विषयों में। तो जब सत्संग में आता है तो सत्संग में आकर के उसको धीरे धीरे जब सत्संग सुनता है उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, तब उसको विवेक मिलता है। बिन सत्संग विवेक न हो ही। तो सत्य असत्य वस्तु विवेक, विवेक कहते किसको हैं? सत्य और असत्य वस्तु का निर्णय करना, सत्य को यथार्थ जानना, असत्य को यथार्थ जानना। सत्य का अर्थ सच्चा, असत्य का अर्थ है झूठा। सच और झूठ को जैसे जैसे हैं वैसा वैसा जानना, ये विवेक है। इसी का नाम विवेक है। ये विवेक जो है ना, ये ज्ञान का साधन है। विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षता, ये साधन चतुष्टय चार साधनों के सहित जो होता है। और निष्काम कर्म उपासना से जिसका चित्त एकाग्र हुआ है, साधन चार जिसके अंदर हैं, वो वेदांत सुनने का अधिकारी होता है। उससे पहले तो उसको वेदांत सुनने का अधिकार ही नहीं मानते शास्त्रकार। निष्काम कर्म और उपासना से जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है और चार साधन जिसके अंदर हैं, वो वेदांत श्रवण करने का अधिकारी होता है। तो जब ऐसा जिज्ञासु सत्संग में आता है, गुरु के पास आता है, गुरु चरणों में, तो उसको विवेक होता है। सत्य असत्य की उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको जान जाता है। और ये विवेक बिना सत्संग के नहीं प्राप्त हो सकता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो सत्संग है वो प्रभु की कृपा से बगैर नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या हुआ? जो सत्संग है वो विवेक का साधन है, उसके बिना विवेक नहीं होता। और जो सत्संग है वो कैसे प्राप्त होता है? प्रभु की कृपा से। बिना प्रभु की कृपा से सत्संग नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा तभी होती है जब कर्म उपासना से निष्काम कर्म के द्वारा भक्ति के द्वारा प्रभु की प्रसन्नता मिलती है, तभी उसकी कृपा होती है। तो वेद की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और आत्म कृपा, ये सब कृपा होती हैं, तभी जिज्ञासु विचार कर सकता है। तो गुरु कृपा जिसके ऊपर, गुर कृपा जेह नर कह कीनी तेह एह जुगत पिशानी, जो युक्ति बता रहे हैं ना, युक्ति मतलब जो शास्त्र से महात्माओं के द्वारा दृष्टांत मिलते हैं उसको युक्ति कहते हैं, दृष्टांत उदाहरण उसको युक्ति कहते हैं। तो गुरु महाराज जी ब्रह्म ज्ञानियों का, जीवन मुक्त लोगों का लक्षण बता रहे हैं ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, नह निंदा नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, ये जो बता रहे हैं ना कि ब्रह्म ज्ञानी जो जीवन मुक्त होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये बता करके अंत में उन्होंने कहा कि ये जो हम युक्ति बता रहे हैं आपको, ये बातें जिसमें ना हो वो जीवन मुक्त होता है। लेकिन युक्ति किसको आती है? गुर कृपा जेह नरको की नहीं, हर एक आदमी को थोड़ी पता चलता है इस युक्ति का भी, ये बातें नहीं जिसमें होती वो महात्मा होता है, जीवन मुक्त होता है। गुर कृपा जिसके ऊपर गुरु ने कृपा की तेह युक्त पहचानी, दूसरे को नहीं पता चलता। नहीं तो हमारा जो मतलब जीवन है वो तो काम ना बिसरो, क्रोध ना बिसरो, लोभ ना छूटो देवा, सारी जिंदगी काम क्रोध लोभ वो जो हमारे को छोड़ते नहीं, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पही सब सेवा। गुरु महाराज कहते हैं ये बात, काम ना बिसरो क्रोध ना बिसरो लोभ ना छूटो देवा, हमारा काम क्रोध लोभ जो है वो छूटता नहीं। हम कहते हैं इतना पाठ किया, इतनी सेवा की, इतनी हम उपासना करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना होम करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं भी पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, मुखल पही सब सेवा। आपका सारा पूजा पाठ जो कुछ आपने किया है, पूरा दिन आप पाठ करते हो, शाम को बैठ करके निंदा कर देते हो, तो सब समाप्त, एक ही बार सब समाप्त हो जाता है। इसलिए केवल पूजा पाठ से बात नहीं बनती, उसमें साथ में एक तो ख्याल रखना पड़ता है कि शिष्टाचार अति अवश्य होता है, शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान, जो भी जिस पद में रहता है उसको वैसा सम्मान देना, बड़े की बात नहीं छोटा भी हो भले, उसके गुण देख करके उसकी अवस्था देख करके उसको सम्मान देना। बच्चे को भी सम्मान कौन सा होता बच्चे का, कि उसको बच्चे वाला प्रेम मिले, यही उसके लिए सम्मान है ना। पति पत्नी का सम्मान करती है, पति पत्नी का कर्ता भाव अपना, जब सब लोग अपना अपना कर्तव्य पालन करते हैं, इसको शिष्टाचार कहते हैं, ये भी आना चाहिए ना। यदि पूजा पाठ भी करते रहे, लोगों को गाली भी निकालते रहे, निंदा भी करते रहे, सबकी मतलब जो है बद दुआएं मिलती रहे, तब पूजा पाठ नहीं काम करता। पूजा पाठ का अर्थ ये होता है कि उसके करने से हमारे जीवन में तब्दीली आनी चाहिए, तभी पता चलता ना कि हमारे अंदर को असर हुआ है पूजा पाठ का। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपकी सेवा, सेवा से सब आ जाता है, पूजा जो करते हैं आप, भक्ति स्मरण सब कुछ सेवा के अंदर आ जाता है। तो यदि आपके मुख से निंदा नहीं छूटी तो निफल पही सब सेवा। इसलिए बात ये आती है कि विवेक आता है सत्संग में आकर के, विवेक जब आता है तो फिर पता चल जाता है, फिर सत्य असत्य का जब विवेक हो जाता है तो उसको अभ्यास करना शुरू कर देता है जिज्ञासु, सत्य को छोड़ना पकड़ना शुरू कर देता है, सत्य मतलब सार सार जो होता है उसको ग्रहण करना शुरू कर देता है, असार जो झूठा है ना, हर एक चीज में सत्य है ना, ये बात नहीं है कि सत्य कोई अलग से कोई चीजें जो है उसको देखना कि इसमें सत्य है तो इसको छोड़ना है, हर एक चीज में सत्य है ना, कोई भी संसार की वस्तु है उसमें सत्य भी है और झूठ भी है। यही बात समझ में आ जाए तो फिर हर एक बात से आप, हर एक चीज से आप सारा सार को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप जो धान निकालते हैं ना, चावल जब निकालते हैं तो क्या वहां सब सत्य सत्य है कि झूठ है? आप जब धान को उसमें जाकर के मशीन से चावल निकालते हैं तो भूसा तो पहले ही अब अलग कर देते हैं, उसके बाद जो उसके छिलके होते हैं उसको अलग करते हैं, चावल को ग्रहण करते हैं। तो सत्य सत्य तो वहां पर भी समझ में आता है ना कि व्यवहार में जो चावल है वो हमारे को चाहिए, भूसा नहीं चाहिए। तो इसलिए व्यवहार में चलने के लिए तो वो सत्य है ना, अभी चाहिए हमारे को। तो जो उसका भूसा था जो चावल का वो झूठा था ना, हमारे लिए सार नहीं था, असार था, इसलिए छोड़ दिया हमने। तो सत्य क्या है असत्य क्या है, जब हरेक संसार की वस्तु को प्रकट करने वाली जो वस्तु वो सत्य है, जिससे संसार की वस्तुएं प्रकाशित होती है वो सत्य है। जो भी वस्तु को आप जिसका नाम लेकर के उसको किसी के सामने आप दिखाते हैं या लिखते हैं तो उसके बीच में उसको प्रकट करने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला जो है वो क्या है, सत्य है कि नहीं। घड़ा है, पट है, घट है जो एक सत्य है के बिना कोई वस्तु पता ही नहीं चलेगा। कोई भी वस्तु होगी संसार की है चाहिए साथ में, वो है ही तो सत्य है। उसमें जो घटपट जितना संसार दिखाई पड़ रहा है उसमें अस्थि भांति प्रिय है कि नहीं, सब में अस्थि भांति प्रिय क्या है, सत्य है। और नाम और रूप जो असत्य है, तो हरेक वस्तु में दोनों भास रही है कि नहीं, दोनों। यही तो विवेक की बात है, जो विवेकी होगा उसके सामने जो भी विषय आएगा समझ लेगा कि नाम और रूप से ये विषय असत्य है और अस्थि भांति प्रिय रूप में ये विषय, भले उसके सामने घड़ा ही पड़ा है, उसके लिए अस्थि भांति प्रिय रूप में घड़ा भी सत्य है, नाम रूप से नहीं। हम लोगों को तो नाम रूप में सत्य दिख रहा है ना, लेकिन विवेकी पुरुषों को अस्थि भांति प्रिय रूप में वो सत्य मानते हैं, नाम रूप से नहीं। ऐसा जो है ये विवेक है, ये विवेक ही मानो जो है ना, ये पहली भूमिका है। शुभ इच्छा यही तो पहली भूमिका है, विवेक सब इच्छा तो यही है ना कि उसको ग्रहण करने की इच्छा प्रकट होना कि इसको छोड़ूं, इसको ग्रहण करूं, ये मेरा ग्रहण करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, ये विवेक ही मानो पहली भूमिका है। सब इच्छा, जब सब इच्छा होती विवेक होता है तब फिर उसके अंदर विचार आता है, सुविचारणा दूसरी भूमिका है ना, सुविचार श्रेष्ठ विचार। तो फिर उसको विचार आता है, कल हमने विचार किया था, जब विवेक आता है तो विवेक के बाद में वैराग्य आता, खट संपत्ति आती है। तो फिर गुरुओं के पास जा करके उनकी सेवा, उनका प्रसन्नता प्राप्त करके तब फिर पूछता है ना कि अहम मैं कौन हूँ, को हम कथमिदम जातम, मैं कौन हूँ, ये जो दिखाई पड़ता ये क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका कारण क्या है। ऐसा जो है ये सुविचार उसके अंदर आता है, विचार से फिर निर्णय करता है। जब विचार आता है तो विचार का अर्थ हुआ कि मनन, पहले उसने विवेक आया, सब इच्छा हुई तो जाकर के गुरु के पास से श्रवण किया, वेद शास्त्र को महावाक्य को श्रवण किया, तो उसके बाद सुविचार के द्वारा, सुविचार का अर्थ मनन किया युक्ति से उसने कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, एकांत में बैठ करके मनन किया। मनन ही दूसरी भूमिका है, विचार करते मनन करना कि यदि गुरु लोगों ने मेरे को श्रवण कराया, वेद शास्त्र उसके महावाक्य मेरे को दिए गुरु जी ने कि तुम ब्रह्म हो, तो मैं कैसे ब्रह्म हूं, यह युक्ति से तर्क से सिद्ध करता है, निश्चय करता है कि मैं यदि ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं। यह है सुविचार नाम की दूसरी भूमिका, भूमिका मतलब मंजिल, दूसरी मंजिल। मंजिल मंजिल जब चढ़ेगा धीरे धीरे स्टेप, तो तभी पहुंचेगा ना अपनी मंजिल पर। तो तीसरी जो भूमिका है, तीसरी जो मंजिल है वो है तनु मानसा। तनु का अर्थ क्या होता है, रिश पतला हो जाना, मतलब कमजोर हो जाना, सूक्ष्म हो जाना। मानसा का अर्थ क्या, मन की वृत्ति, जो हमारी वृत्ति है ना उसको सूक्ष्म हो जाना, उसी का नाम है तनु मानसा। मान मतलब मन की वृत्तियां, अंतःकरण की वृत्ति, तनु मतलब रिच हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। जब श्रवण किया, मनन किया, तो उसके द्वारा हमारे मन की जो वृत्तियां थी वह सूक्ष्म हो गई, भाव जो जाति वृत्तियां उठती थी ना, हमारे स्वरूप के विरोधी जो वृत्तियां थी उसका तिरस्कार करना शुरू किया था। जो सजातीय वृत्ति है ना उनका निरंतर अभ्यास करना शुरू किया हमने। सजातीय का मतलब तो समझते हैं ब्रह्माकार वृत्ति जिससे बनती है, और विरोधी वृत्ति जो हमारे मतलब ब्रह्म के साथ अभेद होने में एकता करने में बीच में से प्रतिबंध बनती वो विरोधी वृत्तियां हैं। वृत्ति क्या कहते हैं, वृत्ति मतलब अंतःकरण का परिणाम बदलना। तो जो वृत्ति हमारी धीरे धीरे अभ्यास करते करते सूक्ष्म हो गई, जब सूक्ष्म वृत्ति हो जाती है तो फिर तेल धारावत एकांत बैठ के चिंतन करता, तेल धारावत टूटने नहीं देता, एकदम जिज्ञासु जैसे तेल की धारा टूटती नहीं ना, ऐसे सजाती वृत्तियों का अभ्यास करता है। भाव जो एक बार वृत्ति बन गई ना उसकी, उसको छूटने नहीं देता। यह है तीसरी भूमिका, इसी का नाम है निधिध्यासन। तनुमानसा का अर्थ है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता कि एकदम तेल धारावत जो हमने निश्चित किया श्रवण से मनन से, जिस अर्थ का चिंतन हमने किया ना, निश्चय किया मनन के द्वारा, उस अर्थ को बना करके रखना। एक बार मतलब निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ना शरीर हूं, ना मैं अवस्था हूं, ना कोष हूं, ना प्राण हूं, यह निश्चय कर लिया ना, जब इस अवस्था को बनाए रखना, यह तनु मानसा सूक्ष्म वृत्ति। वृत्ति जब मतलब बहिर्मुख होती है तो स्थूल वृत्ति होती है ना, स्थूल पदार्थों पर रहती है वृत्ति। अब स्थूल जो प्रपंच था वो पूरा छूट गया, केवल जो सूक्ष्म था ना हमारा अपना आप, जिसको किसी प्रमाण से किसी वस्तु से सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो है वो जो सूक्ष्म हमारा अपना चिंतन है, उस वृत्ति को बनाए रखना, यही तनुमानसा है। मन की वृत्ति, मन का स्वभाव कैसा है, मन के सामने आप जैसा कोई पदार्थ लाओगे ना वो वैसा ही चिंतन करेगा। यदि आप उसके सामने मकान का चिंतन रखोगे, मकान दिखाओगे तो मकान का चिंतन करेगा, कोठी लाओगे तो कोठी का करेगा, कार खड़ी करोगे तो कार का चिंतन करेगा। जो वस्तु आप उसके सामने लाओगे उसका वो चिंतन करेगा, वैसा ही उसकी वृत्ति वैसी बनेगी। वृत्ति का मतलब बदल जाएगा, उसी कार का हो जाएगा। जो भी अंतःकरण के सामने मन के सामने आप विषय रखोगे वैसा ही होता जाएगा। आंखों से कानों से नाक से जो विषय आता है ना, जैसा आता है मन वैसा ही हो जाता है। वैसे परतंत्रम ही बाहर मना ऐसा कहते हैं, परतंत्रम ही बहिर मना, जो मन है ना वो बाहर जाने में परतंत्र है, अधीन है, नहीं जा सकता। अंदर तो कुछ भी करता रहे लेकिन बाहर जाने में वो स्वतंत्र नहीं है, अधीन है। किसके अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, बिना इंद्रियों के वो बाहर नहीं जा सकता। जब आप इंद्रियों का कंट्रोल नहीं कर पाते तब उसको समय मिलता है बाहर जाने के लिए, रास्ता आपने खोल दिया ना उसका। इसलिए कहते हैं ना पहले आप इंद्रियों का दमन करो, जब इंद्रियों का दमन करेंगे तो मन का शम हो जाएगा धीरे धीरे। इंद्रिय हमारे जो है ना, इंद्रिय रूपी जो झरोखे हैं वो खुले हुए हैं, तो बाहर से उसको निकलने के लिए आपने रास्ते सब खोल रखे, जिधर को चाहता उधर को निकल जाता है वो। यदि आप आंख मीचते हैं तो कान से निकल जाता है, यदि कानों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो कोई नाक से उसको मिल जाता है रास्ता निकलने के लिए। जो हमारे इंद्रिय है ना, इंद्रिय ही उसके द्वार हैं, वो उसमें आता है ना, एक प्रसंग भी आता है उपनिषद में, ते आत्मानम रथिनम विद्धि, उसमें जो ऐसा रथ का दृष्टांत दिया है ना कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, शरीरम रथमेव तू। उसमें इंद्रियों को कहा कि इंद्रिय क्या है, उस रथ के घोड़े हैं, तो बुद्धि लगाम है, आत्मा रूपी रथी के ऊपर बैठा है, उसका बुद्धि रूपी लगाम है, उसके द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ियों को वश में करके रखे तब तो ठीक है, नहीं तो जहां चाहे वहां उबड़ खाबड़ रास्ते में रात को चला देंगे। तो कहने का भाव यही है कि जो हमारी बुद्धि रूपी लगाम है ना, उसके घोड़े क्या हैं, इंद्रिय। जो सारथी है यदि ढीला हो जाएगा वो, तो घोड़े जहां चाहें उधर को खींच के ले जाएंगे। तो जब हम कंट्रोल से छोड़ देते हैं ना, तो जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं खींच लेते हैं, ऊपर बैठा तो बेवस हो जाता है ना, जब घोड़े ही उसके बस में नहीं रहेंगे तो जिधर चाहे खींच के ले जाएंगे। तो मन को बाहर निकलने के लिए रास्ता क्या है, हमारे इंद्रिय। और इंद्रियों का स्वभाव कहते हैं उपनिषदकार प्रांची खाणी व्यतरणत स्वयंभू। प्रांची खाणी, खाणी मतलब इंद्रियाणी प्रांची, ये बहिर को देखती है। इसका स्वभाव ही ब्रह्म ने ऐसा बनाया, ब्रह्मा ने बहिर्मुख बना दिया। तस्मात प्रांग पश्यति न अंतरात्मन, इसलिए कहते हैं इनकी हत्या कर दी ब्रह्मा ने, ऐसा स्वभाव बना दिया बाहर मुख के। तस्मात प्रांग पश्यति, इसलिए ये बहिर को देखती है न अंतरात्मन, अपने अंदर को नहीं देखती, इसका स्वभाव ही ऐसा बनाया कि ये बाहर देखती है। तो जब आप मन को भी उसके साथ लगा देते हो, मन मन तो पहले ही उसके कंट्रोल में रहता ही है, जब आपने उसका शमन नहीं किया, इंद्रियों का दमन नहीं किया, तो जिस जिधर को आंखें चाहती है मन उधर को निकल जाता है, जो शब्द कान देते हैं उसको उसी में मस्त हो जाता है। जैसी उसको सुगंधी चाहिए ना, जैसी रसना देती, जैसी देती है घ्राण, वो वैसा उसी की उसे रस में मस्त हो जाता है, उसको नहीं पता चलता। जब आप इंद्रियों का दमन करेंगे तो जाएगा कहाँ, वो अंदर तो खुरापात करेगा वो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं आप देते उसको, तो जाएगा कहाँ। जैसे कोई पशु होता ना, एक बांधा रहता है ना, वो उसको आदत पड़ी होती है इधर उधर घूमने की, तो एक ही जगह आप बांध देते हैं ना, तो घूमता घूमता अंत में उसको बैठना ही पड़ता है कि कहाँ जाऊँगा अब। जब आप इंद्रियों का कंट्रोल कर लेंगे तो उसको रास्ता उसका बंद कर दिया आपने, आप कहते हैं ना कि हम आपका रास्ता ही बंद कर देंगे, कहाँ से जाओगे। जब किसी को परेशान करना तो आप उसका रास्ता आगे से बंद कर देते तो कहाँ जाएगा वो। तो मन को जब आपने शमन करना है ना, शाम उसका बैठाना है, उसको कंट्रोल में करना है, तो पहले इंद्रियों को दमन करना पड़ेगा, तब उसका रास्ता बाहर से बंद हो जाएगा, अंदर घूमेगा, अंदर खुरापात करेगा, तब उसको धीरे धीरे आप काबू में कर सकते हैं। तो हम मन को रोक नहीं पाते क्योंकि इंद्रिय हमारे बहिर्मुख हैं, आंखों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, कान पर नियंत्रण नहीं है हमारा। जहां आंखें जिस रूप को चाहती हैं हम उधर को जाना शुरू कर देते हैं, उसको रोकते नहीं वहां से, वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। तो ये है मन की वृत्ति सूक्ष्म करने की बात है, मतलब निधिध्यासन करना। इंद्रिय को आपने पहले दमन किया, मन का शमन किया, मन के शमन करके आपने मन ने विचार करके इतना सूक्ष्म कर दिया है कि अब तेल धारावत आपकी वृत्ति टूटती नहीं है। एक ही जो अर्थ आपने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का आपने निश्चय किया ना, कि ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है, जैसा विषय आप मन को देंगे वो वैसा ही चिंतन करेगा। तो मन वैसे मित्र भी है, यदि उसको आप पहले से ही उसको उधर की तरफ लगाएंगे तो उसी को पकड़ लेता है वो। शुरू से यदि आप चिंतन उसका करने लगेंगे ना, तो उसको तो जैसा चिंतन उसको मिलता है उसी में परिपक्व हो जाता है, लेकिन धोखा देता है बार बार। ये भी बात है कि आप सबको वश में कर सकते हैं, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल होता है, धोखा देता है ना बार बार, वो धोखा भी इस हिसाब से देता कि आपको पता नहीं चलता। ऐसा धोखा देता है कि उसको जो उसके धोखे को साधक समझता रहे उसकी कामयाबी है, साधक के साथ यही होता है कि वो मन के धोखे को समझ नहीं पाता। थोड़ा सा भी जब एकाग्र होता है ना तो उसके साथ धोखा हो जाता है, वो कहता है अब आनंद है, अब कुछ नहीं होता, लेकिन उसी आनंद से बिगड़ जाता है वो। उसी को थोड़ी सी उसको सिद्धि जब मिलती है ना, तो उसी में मस्त हो जाता, उसी से धोखा हो जाता है। तो उसको पकड़ने के लिए विशेष फिर प्रयत्न करना पड़ता। जैसे कहते किसी एक चोर ने चोरी की राजा के दरबार में, तो चोरी करके वो निकल गया, तो बाद में क्या किया उसने, साधु वेश बना लिया। अब उसको पकड़े कौन, बहुत यत्न किया लोगों ने, कर्मचारियों ने, लेकिन पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसने वेश बदल लिया, साधु वेश बना लिया। गुप्तचर छोड़े उन्होंने, बहुत यत्न किया, तब भी नहीं मिले। एक कोई जो साधु वेश में था ना, उसके ऊपर किसी गुप्तचर को संशय हुआ, ये हो सकता है, वो बहुत यत्न किया उसने लेकिन पता ना चले, तब उसने क्या किया, उसने जो गुप्तचर था ना उसका, उसने उसके उस साधु भेष वाले के पास जाकर उसका शिष्य बन गया। कई दिन उसकी सेवा करते रहे, उसके उससे विद्या भी पढ़ते रहे, सीखते रहे। और बीच में जब काफ़ी विद्या पढ़ी तो एक दिन मतलब बीच बीच में बातें करते रहते थे, गुरुजी मैंने विद्या भी आपसे बहुत पढ़ी है, ध्यान करता हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता क्योंकि मैंने जीवन में चोरी बहुत की है, इसलिए मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे को वही चिंतन होता है। तो उसी समय वो बोल पड़े कि तुमने तो दो चार चोरी की होगी, हमारा पूरा जीवन ही चोरी में बीत गया। यहाँ तक कि हमने दरबार में, राजे के दरबार में चोरी की, उसको भी नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब से हम अध्यात्म में पड़े हैं तब हमारा मन शांत है। उसी समय वो चेला राम जी जो है दूसरे दिन आ गए पुलिस के कपड़े में, तो गुरु जी को पकड़ के डाल दिया जेल में। तो बात यह है कि मां ने ऐसे धोखा करता कि आपको पता ही नहीं चलता। उसको पकड़ने के लिए सूक्ष्म वृत्ति चाहिए, जैसे उसने पकड़ा ना उसने भी कैसे पकड़ा जाएगा, तो उसको पकड़ने के लिए सूक्ष्म विचार चाहिए ना, सूक्ष्म, बहिर से नहीं पकड़ा जाएगा। जब तक बहिर आप उसके दुनिया भर के विषय उसके आगे रखेंगे तो उसको कहेंगे ब्रह्म चिंतन करो, तो कैसे करेगा वो, जो आप उसके सामने लाएंगे उसी का चिंतन करेगा। जब तेल धारावत एक ही वृत्ति बनाए रखेंगे ना, तब फिर आपको मानो कि आपकी कामयाबी हो रही है। ऐसे चिंतन बहुत कम होता है, जिन लोगों का होता है उनकी वृत्ति अलग हो जाती है, उनका फिर एक ही बस विषय उनके सामने रहता है, दूसरा नहीं आता। जैसे कहते एक महात्मा चिंतन कर रहे थे ना, तेल धारावत अपनी वृत्ति में मस्त थे, वो अपने स्वरूप में फकर महात्मा थे, उनको संसार से कोई मतलब नहीं, उनका चिंतन टूटता ही नहीं था। एक भक्त आ गया उनका भोजन लेकर के, भोजन लेकर के जब वो घर से आया तो उसको भूल हो गई उससे कि उस दिन एकादशी थी, उसने चावल बना लिए। जब वो घर से निकला आधा रास्ता आया था तब उसको ख्याल आया भी आज तो एकादशी है, एकादशी को चावल नहीं खाते महात्मा जो व्रत रखते हैं। तो उसने सोचा कि अब यहाँ से मैं कैसे वापस जाऊँ, कोई नहीं चलते हैं महात्मा से प्रार्थना कर लेंगे। जब वो पहुंचा जाकर के महात्मा जी के पास, उसने भोजन आगे रखा तो उसने कहा महाराज आज एकादशी है लेकिन मेरे से भूल हो गई कि मैंने चावल बना लिए थे, अब जैसे आपकी इच्छा हो। ऐसा जब उसने बोला तो महात्मा अपनी मस्ती में अपना तेल धारावत उनका चिंतन चल रहा था, संसार से अलग हुए पड़े थे वो, लेकिन जब ही उन्होंने इतना शब्द बोला कि आज एकादशी है तो उनके अंदर घुस गए उसके शब्द, आज एकादशी है। उनकी वृत्ति तेल धारावत चल रही थी ना, बीच में संसार का विषय घुस गया। तो थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा कि महाराज मैं चलता हूँ, आप भोजन पा लेना आपने। तो महात्मा बोलते आज तो एकादशी है, उनका वृत्ति उधर उधर तरफ हो गई, एक तरफ चल रही थी ना, जब दिमाग में घुस गया भी आज एकादशी है, तो जब उन्होंने कहा भोजन पा लीजिएगा, कहते आज तो एकादशी है, तो उसने सोचा कि महात्मा जी ने व्रत रखा होगा इसलिए वो थाल उठा के ले गया। और दूसरे दिन फिर भोजन बना के लाया, वो दूसरे दिन ले आकर के रखा, तो उसने कहा महाराज जी भोजन पा लीजिए, महाराज जी वो कहते आज तो एकादशी है। महात्मा तो उनका चिंतन चल रहा था ना, जैसे उनके दिमाग में घुस गया तो कहते आज तो एकादशी है। तीसरे दिन फिर लाया भोजन, तो कहता महाराज भोजन पाइए, कहते आज तो एकादशी है। मतलब उनकी वृत्ति बनी हुई थी ना, उनको तेल धारावत उनकी वृत्ति टूटती नहीं थी, जैसी बन गई वैसी बोलते थे वो। तब उसने कहा कि लगता महात्मा जी मेरे से गुस्सा हो गए, उन्हें और किसी महात्मा से जाकर के पूछा भी मैं क्या करूं, जब मैं जाता हूं तो वो ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कहा भाई आपको मालूम नहीं हो तो फकर महात्मा, उनका तो चिंतन चल रहा है, जैसा कल को आप भोजन लेकर के जाइएगा तो उनको कहना महाराज जी एकादशी बीत गई है भोजन पा लीजिए। जब वो दूसरे दिन गया तो उसने जाकर के भोजन रखा तो कहता महाराज जी एकादशी बीत गई है अब भोजन पा लीजिए, तो उन्होंने भोजन पा लिया। वो उसको बोलते हैं एक मतलब तेल धारावत चिंतन, जैसा चिंतन बन गया उसको फिर उनको भूलता ही नहीं है, ऐसा चिंतन जो होता है ना उसको तनुमानसा कहते हैं। तीसरी भूमिका है भी, जैसा एक बार ब्रह्मकार था आपने चिंतन कर लिया तो हर रोज तैल धारा वत टूटना नहीं चाहिए, यानी कि आप जब तक जहाँ बैठे तो आपको याद है कि मैं ब्रह्म हूँ, जब बाहर निकले तो कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, कभी उससे लड़ना, कभी उससे लड़ना, कभी उसको फिटकारना, कभी उसको, वो सब चिंतन समाप्त हो जाता, उसको तेल धारावत तो उसको नहीं कहते हैं। तो तेल धारावत जो चिंतन होता ना उसी का नाम तनु मानसा है, एक जैसा बनाए रखना। बनता तभी है जब पहले आप श्रवण करेंगे, उसके बाद मनन करेंगे, तर्क से बार बार तर्क दे करके जब चिंतन करेंगे तभी पता चलता है, तभी तेल धारावत वृत्ति होती है। जैसे एक साखी आती है ना, साखी एक आपने शायद श्रवण में की होगी कि एक गुरु हर राय महाराज जी का सिख हुआ है काबल में, भाई गोंदा उसका नाम, भाई गोंदा, ओ गुरु हर राय साहब महाराज जी जो सातवें गुरु जी और कीर्तपुर में थे महाराज जी, तो वो महाराज जी के चरणों का बहुत प्रेमी था, हर रोज वहाँ स्नान करके सुबह सुबह महाराज जी के चरणों का ध्यान धर के बैठता, तेल धारावत। जैसे तनु मानसा वाली वृत्ति होती है ना, भले वो सगुण का ही ध्यान करता था लेकिन ऐसे एकदम मस्ती में। एक दिन वो घर से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकला तो उसने नदी पर स्नान किया, तो वहां बैठ के महाराज जी के चरणों का ध्यान धार करके चरणों को उसने अपने मस्तक में टिका लिया, महाराज जी के चरणों का ऐसा ध्यान किया, महाराज जी को बांध लिया उसने। महाराज जी उधर बैठे हैं कीर्तपुर में, गुरु हर राय महाराज जी, तो वो वहां बैठा तो महाराज जी की जहां समाधि लग गई, क्योंकि उसने ध्यान महाराज जी के चरणों का रखा ना, तो महाराज जी को हिलने नहीं देता इधर उधर, तो उसकी ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी कि सुबह से बैठा था, दोपहर का समय हो गया, तो उधर भोजन का समय हो गया, तो जब भोजन तैयार किया भंडारी ने, तो उसने महाराज जी को आके प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन तैयार हो गया, आप भोग लगाइए। तो महाराज जी को कोई पता नहीं, महाराज जी अपनी मस्ती में, बिल्कुल समाधि टूटी नहीं, तो किसी ने भोजन नहीं किया, जब महाराज ने भोग नहीं लगाया तो कौन भोजन करे। दोपहर का समय बीत गया, शाम का समय बीत गया, आठ पहर महाराज जी बैठे रहे, आठ पहर सब सिख देखें भी आज क्या बात है, महाराज जी उठते ही नहीं है। 24 घंटे उसने ध्यान किया था वहां बैठे बैठे, उसकी वहां समाधि, उसने महाराज जी के चरण नहीं छोड़े तो महाराज जी उठे नहीं। आठ पहर के बाद महाराज जी उठे, तब सिखों ने पूछा कि महाराज जी क्या बात है, ये आज ऐसा कैसे हुआ। तो तब महाराज ने बताया कि हमारे वश की बात नहीं है, मेरी बांधी भक्त छावे बांधे भक्त ना छूटे मोह है, एक समय मोह को गह बांधे तो फिर मोह पे जवाब ना होए, जो मैं बांधता हूं उसको भक्त छुड़ा लेता है, यदि भक्त बांध देता है कहते मेरे से छूटता नहीं है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है, किसी भक्त ने मेरे को बांध दिया तो मैं छूट जाऊं। एक समय मोह को गह बांधे, एक समय जो मेरे को गह लेता पकड़ लेता है ना, तो अपन मोह पे जवाब ना होए, मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं। भाई गोंदे ने भाई हमारे चरण पकड़ रखे तो हम क्या करते। तो उन्होंने सिखों ने कहा ऐसा ही महाराज जी कहते हैं, ऐसा क्या पूछ लेना, जब भाई गोंदा आएगा तब पूछ लेना। तो ऐसा ध्यान धारण किया कि 6 महीने के बाद भाई गोंदा वहां से अपने भक्त मंडली को लेके साथ में आए, तो लोगों ने पूछा, तारीख नोट कर रखी थी कि इस दिन की बात है, पूछा कि आप बैठे थे, कहते हाँ हम बैठे थे। तो आठ पैर उसने महाराज जी को बांध रखा, उसको कहते हैं तेल धारावत, एक जैसी वृत्ति, इधर उधर हिलने नहीं दिया महाराज जी को, हिलने नहीं दिया उसने। ये ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसी तनु मानसा होती है कि एक तेल धारावत वृत्ति हो, बैर की वृत्ति अंदर घुसे ना, वो तनु मानसा है, वृत्ति सूक्ष्म हो गई। ऐसे ही देवीदास, एक थे देवीदास, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रेमी थे वो, लेकिन वो देवीदास कौन था, भीमचंद का मंत्री था वो, भीमचंद महाराज जी का पक्का विरोधी, भीमचंद कहलूरी वाला जो राजा था, पहाड़ी राजा, उसका मंत्री था लेकिन महाराज का प्रेमी था। उसको पता चल गया भीमचंद को कि ये उनके चरणों का ध्यान करता है, तो उसने कहा कि इसको पहाड़ी पर ले जाओ, इसकी आंखों के बीच में गर्म करके सिलाई लगाओ, भीमचंद ने कहा, अपने मंत्री और लोगों को कहा, कर्मचारियों को, कि इसको पहाड़ के ऊपर ले जाओ, गर्म करके सिलाई इसकी आंखों में लगाओ, इसकी आंखें जला दो। तो जब उसको पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो उसने महाराज जी को याद किया, उसको जब ले गए वहां पहाड़ी पर, तो उसके गर्म करके सिलाई जब लगाने लगे तो समाधि लगा के उन्होंने गुरु महाराज के, गुरु गोविंद सिंह के चरणों का ध्यान धार लिया कि महाराज जी अब मेरे वश की बात नहीं है, आपकी लज्जा है, यदि मेरी आंखों कुछ होगा तो आपकी बेइज्जती होगी, मैं आपका शिष्य हूं। तो महाराज जी बैठे थे वहां ही आनंदपुर साहब में, तो जब उसने मतलब वहां ध्यान धारा महाराज जी का, तो उन्होंने सिलाई लगाई उसके दोनों आंखों में, तो महाराज जी के पांव जल गए, इतने इतने बड़े छाले पै गए महाराज जी के। यहीं महाराज ने जहां पर मतलब उसके ऊपर जब उसके वहां लगा रहे थे, महाराज कहते हमारे चरणों में पानी डालते जाओ, यहीं पर बैठे थे महाराज जी। इतनी मतलब ज्यादा अग्नि हुई उसके जब लगी, तो महाराज जी के ऊपर पानी डाला, लेकिन फिर महाराज जी पांव फिर भी जल गए, एकदम छाले पड़ गए, जल गए नीचे से तलुए। तो पूछा कि महाराज क्या हुआ, किसी को नहीं पता चला। जब देवीदास आया फिर बाद में उसकी आंखों को कुछ नहीं हुआ, सिलाई लगाई उन्होंने गर्म गर्म, उसको कुछ नहीं हुआ। जब वो महाराज जी के चरणों में पास आया तो उसने मतलब जा आ करके बैठा, तो उसने कहा महाराज जी आपके चरणों को क्या हुआ, उसको क्या मालूम। जब महाराज ने बताया तो मतलब महाराज जी के चरणों में पड़ के रोने लगा। ये होती है बात, जब कोई चरणों का ध्यान धारता है जहाँ प्रभु का चिंतन करता है, तब उसको फिर अपना ही ख्याल लेता है, उसका प्रीतम जो होता है ना सामने, बस उसको वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो ऐसी तेल धारा व्रत वृत्ति होनी चाहिए कि जो प्रीतम है हमारा, जो हमारा ध्येय है ना, केवल वो ही हमारे सामने रहे, इधर उधर का ध्यान कहीं ना रहे। उसको कहते हैं तनुमानसा। जब विवेक होता है उसके बाद मतलब विचार करता है ना जिज्ञासु, तो फिर उसके बाद मनन के बाद जो तीसरी अवस्था है निधिध्यासन की, फिर उसको कुछ ख्याल नहीं रहता, केवल अपना आप ही उसको दिखता है, उसका चिंतन करता रहता है। लेकिन उसको अभ्यास को करना ही पड़ता है, यदि आप नहीं लगाएंगे तो विजाति वृत्ति बीच में आ जाती है। सजाति जो वृत्ति है, जो अपने स्वरूप को चिंतन करने वाली, उसको तेल धारावत जब एक वृत्ति बना के रखता है तो उसको बाकी सब जो बहर की जितनी वृत्तियां हैं वो छूट जाती है, बस एक उसको ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है, उसी का चिंतन करता रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ना शरीर हूँ ना मैं, ये तो उसने पहले निश्चय कर लिया, केवल ब्रह्म रूप में स्थित रहता है, इधर उधर होने नहीं देता। ये उसकी तीसरी भूमिका है, तीसरी मंजिल है, इसको बोलते हैं तनुमानसा, मन की वृत्ति को एकाग्र करना। उसका ध्यान ही केवल गुरु चरणों में जैसे रहा था ना भाई गोंदे का, ऐसे उसका अपने स्वरूप में रहता हो, तो बाहर की बात बनाई हमने कि बाहर का चिंतन, सगुण का चिंतन कर रहे थे वो लोग, तब भी इतने एकाग्र हो गए। तो जो सगुण को छोड़ करके जो निर्गुण है उसका चिंतन करता, अपने आप का चिंतन करता है, उसकी वृत्ति कितनी सूक्ष्म हो गई है, हो जाती है। जब उनको केवल चरण ही दिख रहे हैं तो जो अपना ही चिंतन करता है उसको तो कुछ भी नहीं दिखता, और अपने बगैर उसको अपना आप ही चिंतन होता है कि मैं ही सब जगह हूं। इसका नाम है तीसरी भूमिका तनुमानसा। और चौथी जो भूमिका है वो क्या है, अप्रोक्ष निजातम चौथी है, चौथी को कहते हैं सत्वापत्ति। चौथी भूमिका का नाम है सत्वापत्ति। तो आपत्ति मतलब प्राप्ति, सत्व मतलब अंत मतलब ज्ञान युक्त अंताकरण की प्राप्ति, शुद्ध अंताकरण की प्राप्ति, मन को ना शुद्ध जब हो गया ऐसी प्राप्ति। इन्होंने लिखा अप्रोक्ष निजातम चौथी अह, अपने आत्मा का अप्रोक्ष जो है उसको चौथी अवस्था कहते हैं। यहां पर लिखा कि अपने आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान साक्षात्कार, वो है चौथी अवस्था। पहली है स्वभिच्छा, स्वभिच्छा जब होती है तो श्रवण करता है। दूसरी है सुविचारणा, सुविचारणा मतलब मनन करना। तो तीसरी तनुमानसा मतलब निधिध्यासन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद फिर साक्षात्कार होता है उसको, जब तत्व का संशोधन कर लेता है तो फिर निधिध्यासन करता भाव उसी को परपक्व करता है। टूटने नहीं देता वृत्ति को। यह चौथी है सत्वापत्ति, मतलब शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति। मानव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ऐसा कहते हैं शास्त्रकार कि मन ही अपने बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयाशक्तम, जो विषय में अशक्त मन है वो बंधन का कारण है। मुक्तय निर्विषम सिमर्थम, मुक्ति के लिए कौन सा मन कारण है? जो विषय से रहित तो हो गया मन वो मुक्ति का कारण है, और जो विषय में असक्त मन है वो बंधन का कारण है। मन ही दोनों काम करता है। मन एवं मनुष्या नाम कारण बंध मोक्ष है, वो बंधन का और मोक्ष का कारण मन ही है। इसलिए कहते हैं मन ही मन से कहे कबीरा मनसा मिले ना कोई। मन ही जो है ना वो दोनों तरफ लग सकता है। यदि विषय का चिंतन करेगा तो बंधन में डाल देगा, तो यदि वो निर्विषय हो जाएगा तो वही मुक्ति का कारण बन जाएगा। सत्वापत्ति का अर्थ यह है कि शुद्ध सत्व अंतःकरण की शुद्धि, मतलब ज्ञान का आभास साक्षात्कार हो जाना, यह सत्वापत्ति है। क्योंकि यह मन कर्मा, यह मन धर्मा, यह मन पंच तत्ते जन्मा, गुरु महाराज जी कहते हैं यह मन पंच तत्ते जन्मा, यह मन कर्मा, यह मन धर्मा, यही सब कर्म करता, यही धर्म करता है। तो इसको समझने में बहुत कठिनाई पड़ती है। वो कहते हैं एक जगह गुरु महाराज जी के बड़े बड़े जो सनक सनंदन आदि है ना, वो भी इस मन को नहीं समझ पाए कि ये कैसे पकड़ में आए। वो भी जहां पर समझने में उनको भी जटिलता हो जाती है, वो भी क्योंकि मन उनके साथ भी धोखा कर देता है। एक बार की साखी आती है ना कि सनक सनंदन आदि सब बैठे थे, अपनी मस्ती में बैठे थे, तो इंद्र ने कहा भी आज देखते हैं भी कितने के एकाग्र हैं। तो इंद्र ने ला करके सबको एक एक फल दिया, उनके आगे रखा। तो वो तो अपनी मस्ती में थे, पहले फल रखा फिर एक के आगे से उठा लिया। उसी समय उनका मन ने खुरापात किया, वो कहते इसने उठाया होगा, वो कहता उसने उठाया होगा, लग झड़ पड़े, झगड़ पड़ा उसमें। वो इंद्र ने सब देखा भी इनका मन कैसे है, एकाग्रता में है। तो जब बाहर का विषय आया तो उसी समय मन उनका उखड़ गया, वो लड़ पड़े एक दूसरे के, तुमने मेरा फल खाया, तुमने मेरा फल खाया। तो ऐसे है ये जो मन है ना, ये मन ऐसे धोखा देता है, बड़े बड़े मुनियों को भी धोखा देता है। तो साधक को साधना करते करते मन के धोखे को समझते रहना चाहिए जी। ये कब धोखा देगा। इसलिए मतलब कहते हैं ना बड़े बड़े साधक, कबीर जी महाराज भी ने कहा कि अभी तक भी हमारे को विश्वास नहीं है भी ये कब डोल जाएगा, कब इधर उधर हो जाएगा। अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या होए। कबीर जी ने कहा कि अजय तो नौका समुद्र में ठेली हुई है, क्या जानो क्या होए, क्या मालूम कि पार जाती है कि नहीं जाती। क्योंकि बीच में धोखा दे देगा मन तो क्या पता किधर चले जाएगा। उन्होंने अंत तक विश्वास नहीं किया, वो कहते क्या पता इसका कब किधर को डोल जाए। ये नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं था, उन्होंने हम लोगों को कहा कि मन का धोखा जो कभी भी हो सकता है, साधक को उसके धोखे को समझ के साधना करनी चाहिए। तो चौथी जो भूमिका है ना अप्रोक्ष निजात्म, चौथी है, चौथी है जब अप्रोक्ष हो जाता है, बहर की वृत्तियां सब शांत हो जाती हैं, फिर उसको सब जगह अपना आप ही दिखाई पड़ता है। पहले उसको संसार का विषय आता रहता है बीच में, त्रिपुटी जो है रहती है। ये चौथी जो है निर्विकल्प समाधि की बुनियाद है, मानो यहां से निर्विकल्प समाधि जो है शुरू होती है, टूटती नहीं है, क्योंकि बाहर की वृत्तियां सब सूक्ष्म हो गई, केवल अपना आप ही दिखाई पड़ता है। फिर सब जगह उसको ब्रह्म के दर्शन होते, ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखाणिए, आत्म सारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानिए, उसको कोई भी प्रभु के बिना किसी का दर्शन ही नहीं होता। जब ध्यान उसकी तरफ जाता ना सभी को छोड़ के, तभी वो सामने दिखाई पड़ता है। उसको और कुछ भी इच्छा लालच रह नहीं गया किसी चीज का, क्योंकि अपने से बगैर किसी को वो देखता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो सत्वापत्ति है, जो श्रवण मनन एवं निदधन ध्यासन द्वारा संशय और विपर्य से रहित, दो प्रकार का रहता है ना बीच में पर्दा, एक असंभावना एक विपरीत भावना। असंभावना कि ब्रह्म सत्य है कि नहीं है, ये होता है ब्रह्म और जीव का भेद है कि अभेद है, ये संशय रहता है ना कि शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र जो कहता है ठीक कहता है कि गलत कहता है, ये संशय रहता है कि जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है कि अभेद सत्य है। तो दूसरा शास्त्र कहता है जो विशिष्ट विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं जीव भी सत्य है ब्रह्म भी सत्य है, उनका भेद भी सत्य है, वे भी कहते हैं, उनको ऐसा संशय पड़ जाता है जिज्ञासु को। फिर कहता कि यदि ब्रह्म सत्य है तो मैं ब्रह्म हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, क्या बताओ, हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, यह संशय रहता है। उसके बाद विपरीत हो जाता है, नहीं मैं नहीं ब्रह्म हो सकता, ब्रह्म है ही नहीं, ये विपरीत भावना हो जाती है कि ब्रह्म नहीं हो सकता। संशय और विपरीत भावना दो प्रकार की भावना से रहित जब होता है ना, श्रवण मनन और ध्यासन जो करता है ना तीन प्रकार से, तो उसका संशय में नहीं रहता, विपरीत भावना में समाप्त हो जाती है। तो फिर कहते हैं स्वरूप साक्षात्कार रूप निर्वल निर्विकल्प स्थिति के हो जाने पर, जब उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर क्या होता है, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि उसकी हो जाती है, श्रवण मनन निदध्यासन हो जाता है। तो तत्व ज्ञान युक्त मान रूप सत्व, जो हमारा सत्व कहते हैं हमारे अंतःकरण को, हमारा अंतःकरण तत्व ज्ञान से युक्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार होता है ना उसको, तो तत्व की उसको साक्षात्कारता जब होती है तो सत्व का अर्थ तो अंतःकरण ही होता है, लेकिन कैसा अंतःकरण है, तत्व ज्ञान से युक्त, ऐसा जो अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण को होना ही सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है, तत्व ज्ञान से युक्त होना ये ही चौथी भूमिका है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं लेकिन तत्व ज्ञान होता कैसे है, यहां पर भी सब गुरु की जरूरत है। क्या पौड़ी आती है कभी मेरे को, तत्त्व सार न जानी, तत्त्व सार न जानी गुरु बाज हो तत्त्व सार न जानी, वहां पर भी यही बात है कि तत्त्व, तत्व की सार, तत्व की सोझी, तत्व का ज्ञान गुरु के बिना नहीं होता। तत्त्व सार न जानी गुरु बाजो तत्त्व सार न जानी, क्यों नहीं तिही गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता, सुत्या रहण विहानी, जो संसार है वो तीन गुणों की भाव जो माया की निद्रा में सोया हुआ है, तिही गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता, अविद्या का जो ब्रह्म है ना भ्रांति है उसमें सोया हुआ है जगत, तिही गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता सुत्या रैण विहानी, उसकी अविद्या की निद्रा में सोए हुए ही जो जिंदगी रूपी रात है वो बीत गई है, बीत रही है, सुत्या रैण विहानी, तिही गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता सुत्या रैण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी, कहे नानक सो तत् पाए जिसनो आनंदन हर लिब लागे जागत रैण विहानी। जय गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं
अमृत शास्त्र से शुरू होते हैं अमृत शास्त्र पन पावन।
हाँ देखो मेरे को उठ नहीं रही थी पंक्ति, गुरु महाराज ने लिखा कि सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे, जो स्मृति है जो शास्त्र है जो वेद है वो किसका विचार करते हैं, पुण्य और पाप का, तत्व का नहीं करते वो। वेद स्मृति आपको क्या बताती है, ये कर्म करने से जय फल मिलता है, ये कर्म करने से ऐसा पाप होता है, वो तीन गुणों की तो बात करते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि त्रैगुणम विषया वेदा, हे अर्जुन जो वेद है वो तीन गुणों की बात करता है, तीन गुणों के विषयों को कहता है, तुम अतीत हो जाओ, इसलिए गुरु महाराज ने यही बात कही कि सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तय सार ना जानी। इन्होंने तो पुण्य पाप के कर्मों का आपको विचार बताया, तत्त्व सार ना जानी, क्योंकि वो उसको कह ही नहीं सकते। वहां पर जब तत्व की बात आती है तो वेद नेति नेति कह के चुप हो जाता है, वहां पर वेद कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो बता नहीं सकता ना कि वैसा है। वेद जो आपको संसार के विषयों की बात बता करके तो ब्रह्म के लिए नेति नेति बोलता है कि उसके बारे में नहीं कह सकता वो क्या है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी से परे है वो। इसलिए तत्त्व सार ना जानी गुरु बाजो, गुरु के बिना तत्व की सार तत्व की सोझी नहीं आती। तत्व की जो सार है वो तो गुरु से ही पता चलता है। गुर कृपा ते से जन जागे, कहते हैं कि पूरी जिंदगी बीत गई सुत्या रहन में हानी, लेकिन जब गुरु के पास गए जैसे श्रुति ने कहा उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधित, श्रुति कहती है उठो जागो, ये काठ उपनिषद की श्रुति है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य, हे जीव तू उठ जाग और प्राप्य प्राप्त हो जा वरान निबोधित। जो महात्मा है ना तत्व चिंतक लोग उनके पास जा, उनकी शरण में जा, वहां जाकर के तद विद्धि प्रणिपाते न, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके पास जाकर के विधि पूर्वक उनकी सेवा करके दंडवत प्रणाम करके प्रणिपाते न होता होता कि दंडवत प्रणाम करके, तो परि प्रश्न इन सेवया, उनकी सेवा करके जिज्ञासा से प्रश्न पूछ उससे, कथम त्रेयम वेतम सिद्धू, मैं कैसे तरू संसार से। इसलिए गुरु की जरूरत है ना कि गुरु के पास जाकर के पूछो। तो ये कहते हैं कि जब गुरु की शरण में हम जाते हैं गुरु की कृपा होती है, तो गुरु कृपा जे नरको कीनी तेह एह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यो ज्यो पानी संग पानी। फिर ऐसा उसको तेल धारावत उसका चिंतन हुआ कि नानक लीन भयो गोविंद स्यो, गोविंद के साथ ब्रह्म के साथ ऐसा भेद हुआ ज्यो पानी संग पानी। जैसे पानी में पानी का अर्थ क्या हुआ, पानी में पानी का अर्थ क्या हुआ, जैसे लोटे का जल जब गंगा में जाकर के आपने डाल दिया तो क्या हुआ, जो पानी संग पानी, पहले वो लोटे का जल था वो गंगा का जल था, लेकिन जब आपने जाकर के लोटा उसमें डाल दिया तो जो पानी संग पानी, जो जल गलियां नालियां टोब्या का जल जाए पवे बिच सुरसरी, सुरसरी मिलत पवित्र पावन हो जावे, गलियां नालियां का अलग अलग जल था ना जाए पवे बिच सुरसरी, गंगा में जब डल गया तो सुरसरी मिलत वहां जब मिला पवित्र पावन हो जावे। अब उसको कोई नाले का जल नहीं कहता, नदिया ते वहा पवे समुद्र ना जानिए है, जब समुद्र में पड़ गए तो नहीं पता चलता कि कौन गंगा है कौन नाला है। तो ऐसी अवस्था कहते तब एक चौथी अवस्था है, जो आगे की तीन भूमिका है ना, आगे तीन और है, साक्षात्कार तो जहां पर ही हो गया, चौथी भूमिका के साक्षात्कार हो जाता है, बाकी तीन भूमिका जो है वो तो केवल जीवन मुक्ति के आनंद के लिए है, आगे कुछ नहीं करना होता। जो ज्ञानी की बाकी तीन भूमिका है ना, वो केवल आगे जो असंशक्ति पदार्था भावनी तीन अवस्था और है वो केवल जीवन मुक्ति के आनंद के लिए है, वहां कुछ नहीं करता साधक। यहां पर चौथी भूमिका पर उसको साक्षात्कार हो जाता है, इसमें से किसी को एक भी भूमिका प्राप्त हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, सब इच्छा ही किसी को हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उसको कभी ना कभी रास्ता मिल जाता है। तो जो यहां पर पहुंच जाए उसका तो फिर कहना ही क्या है, उसके लिए तो धन 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 जन आया, जिस पर सा सब जगत तराया, जावनान का यह स्वभाव जन का संकेत आवे नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।